जैसे आंख से देख के माना जाता है तब तो उसे ईमान कहा जाएगा, वरना एक काफिर भी जन्नत के जहन्नम को देख लेगा तो इनकार नहीं करेगा। जलती हुई आग को देख करके कोई इनकार करने वाला नहीं है। सच्चे की बात को वैसे मानना जैसे देख के माना जाता है। नबी यही तो बताने के लिए आए हैं कामयाबी के लिए कि अगर ये करते रहोगे तो कामयाब होगे, इन चीजों से बचते रहोगे तो कामयाब होगे, इस तरफ बढ़ते रहोगे तो कामयाब रहोगे। तो उनकी बातों को वैसे मानना जैसे देख के माना जाता है। खुदा की कसम रास्ते में चलने लगे उसे सच्चा मोमिन कहा जाए। और यकीन कीजिए कोई इंसान किसी खतरे की चीज को देख करके हिम्मत नहीं करता है कि उस तरफ बढ़े, क्योंकि देख रहा है कि खतरा है, क्योंकि देख रहा है कि मैं पस्ती में जा रहा हूं, क्योंकि देख रहा है कि मैं ये हलाकत की तरफ जा रहा हूं, तो अपने को बचा लेता है। अगर वैसे ही मासूम की और नबी की बात को माने कि नहीं इस तरफ नहीं जाना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, हराम नहीं खाना चाहिए, हराम की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो खुदा की कसम अगर वैसे माने का जैसे देख के मानता है तो फिर हर मुसलमान कामयाबी की राह पर वैसे कामयाब होगा कि अल्लाह वादा कर रहा है ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। देखो घबराओ नहीं, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। शर्त इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त मोमिन यानी वैसे मानो मेरी बात को, मेरे रसूल की बात को जैसे देख के माना जाता है। अगर वैसे तुम मानोगे तो यकीनन जो है तुम कामयाब रहोगे, तुम कामयाब रहोगे। अजीजो हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें एहतराम रसूल भी करना चाहिए है। एहतराम रसूल का मतलब आज के जमाने में कोई आदमी कहे कि अल्लाह के रसूल कहां, कैसे हम एहतराम करें, उनका हम कैसे एहतराम करें, सोचेगा नहीं पूछे कैसे एहतराम करें। चल सूरते हैं, मैं तो तीन आयतें पढ़ करके मैं देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं और वाकई तवज्जो सुन रहे हैं और मेरी बात पहुंच रही है। मैं चंद गुजारिश करना चाहूंगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह कहता है कि वो लोग जो रसूल पर ईमान लाए वाज़रू और उनका एहतराम किया, आज हम कैसे नबी करीम का एहतराम करेंगे? क्या खाली उनका नाम आए तो सलवात पढ़ लेना ये एहतराम है? यकीन एहतराम है। एहतराम दो तरह के होते हैं, एक कुछ लोग अपने ही से एहतराम का तरीका बना लेते हैं तो वो एहतराम जमानी होता है, मकानी हो सकता है। जैसे मसलन मैं इस मगरबी माशरे के एतबार से कहूं कि हमारे यहां किसी के एहतराम का तरीका यह होता है कि आप मस्जिद में गए हैं, आप किसी जनाजे में जा रहे हैं, आप किसी अच्छे जिक्र में जा रहे हैं तो अपना सर ढक लो, टोपी पहन लेना, ये एहतराम की अलामत होती है। लेकिन मगरबी माहौल में अगर किसी बड़े के सामने आ रहे हैं आप तो सर पर टोपी है तो उतार लेना, ये एहतराम होता है। कितना उल्टा हो गया, वहां सर का ढक लेना एहतराम है, यहाँ सर से उस चीज का उतार लेना एहतराम होता है। ये हमारा तो नाया हुआ एहतराम है। अब अगर अल्लाह की किताब ये कह रही है कि तुम मेरे रसूल का एहतराम करो तो उसी का फरीजा भी है कि वह बताए कि उसका एहतराम कैसे करना चाहिए। उसका एहतराम दो तीन आयतें पढ़ रहा हूं, इसमें मैं यकीन जानिए कि कई घंटे बोल सकता हूं, मैं कई अशरे बोल सकता हूं, लेकिन चंद बातें कह रहा हूं, गौर कीजिएगा। अल्लाह ने एहतराम रसूल के सिलसिले में एक बात कही कि मा आताकुम रसूल फखुजू मा नहाकुम अनहु फंतहू। रसूल जो ला के दे दें उसे ले लो और जिससे मना कर दें रुक जाओ, ये एहतराम है। अगर रसूल किसी चीज को दे तो उसे ले लेना उनका एहतराम है, और किसी चीज से रोक दें तो क्या मुसलमान का फरीजा ये नहीं है कि आज वो जाने कि रसूल ने मुझे क्या दिया है और किस जगह क्या देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? मैं बाजार में हूं तो मुझे वहां का सलीका भी सिखाया है मेरे रसूल ने, मैं घर पे हूं तो वहां भी सलीका बताया है, मैं अकेला हूं तो भी जिंदगी का तरीका बताया, मैं अपनी फैमिली में हूं तो उसका भी तरीका बताया है। अगर यकीन जानी मैं हर हर रुख पर गुफ्तगू करना चाहूं तो खाली एक बात कहना चाहूंगा जल्दी ताकि आप सुन सके, मेरा इशारा, खाली इशारा कर रहा हूं कि इंसान अकेला है, उसने भी अगर सुकून चाहता है तो नबी की लाई हुई बातों को इख्तियार कर लेना और मना की हुई बातों को छोड़ देना। खुदा की कसम दुनिया का भी सुकून हासिल होगा और आखिरत का भी सुकून हासिल होगा। करके देखे, इंसान करके तो देखे। हुकूक बयान किए हैं, इंसान रिश्तों के हिसार में घिरा हुआ है। मैं जमीन पे रहता हूं, मेरा जमीन से रिश्ता है, जमीन का हक मेरे ऊपर है तो मुझे भी उसका हक अदा करना चाहिए। मैं जरे आसमान में फिजा में रहता हूं तो फिजा का हक है मेरे ऊपर, मैं उसको अदा करता हूं नहीं करता हूं। मैं मकान में रहता हूं, मकान का हक है। और मैं बताना चाहता हूं कि सारी चीजों के बारे में नबी ने बताया है कि उसका हक क्या है। तुम अगर घर में रह रहे हो तो घर का हक है कि हर शाम कूड़ा तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए। कहते हैं मैं कौल अगर पढ़ो तो कौल ये है कि वो शैतान के बैठने की जगह है। लफ्जी तर्जमे पढ़ करके आदमी हंसने लगता है कि अभी इसमें शैतान वैतान क्या है। नहीं, जमाने के लिहाज से समझना चाहिए कि अगर कहा कि अगर कूड़ा करकट गंदगी रह गई है तो शैतान के बैठने की जगह, तो वहां शैतान किसी शक्ल सूरत में तलाश न कीजिएगा। वो जो बीमारियों की गंदगियां रह जाती हैं वही शैतान है, वही शैतान है। यानी पाकिजगी तहारत का ख्याल करना, कहां तुम्हारे घर में जहां पानी गिरता रहता है उसकी तहारत का बेइंतहा ख्याल रखना, इसलिए भी पानी के रुक जाने के जरासीम पैदा होते हैं, वो शैतान की बैठने की जगह। यानी अब वहां शैतान तलाश करने जाएंगे किसी शक्ल सूरत में, यानी बीमारियों का घर बन जाता है, इसलिए उसका हक पहुंचता है। दीवार की बुलंदी को बताया है कि तुम्हारे घर की दीवार इससे बुलंद नहीं होना चाहिए। वजह क्या है? हो सकता है कि वहां तक तुम्हारी सफाई ना हो सके, गंदगियां जमा होती रहेंगी। सब कुछ बताया जाने ग्रामी, जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। हम समझते खाली एक इंजीनियर जानता है कि दीवार कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी बुलंद होना चाहिए। मजहब ने हमने नहीं सिखाया है, खुदा की कसम हर चीज को सिखाया है, अल्लाह की कसम हर चीज को सिखाया है। मगर मुसलमान खाली मुसलमान घर में पैदा होने की बुनियाद पर मुसलमान है, उसकी तालीमात से दूर है, वो तालीमात से दूर है। अगर मेरे सर पर जो है बाल है तो उसको रखने के और उसके हिफाजत के भी तरीके को बताया है, उसके तरीके को भी बताया है। मैं लिबास पहनता हूं तो उसके सलीके को भी बताया है। किसी जगह का कोई लिबास नहीं होता, उसके हत्ता के रंग को तक को बताया है। मना नहीं किया है मगर कहा है कि सफेद कपड़ा बेहतरीन कपड़ा होता है। खुदा की कसम, चूंकि सफेदी पर जरासीम और गंदगी जल्दी नुमाया हो जाती है, उसको बेहतरीन इसलिए कहा है कि अगर वो गंदगी नुमाया हो जाएगी तो आदमी उसको धुलने के लिए या बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। रंगों में गंदगियां रह जाती हैं, बीमारी का घर होता है। यानी हमको कहने का मकसद ये है कि सारी चीजें हमें मजहब ने सिखाई हैं और बताई हैं, इसलिए अगर हम उनका तस्करा कर रहे हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो उनकी तालीमात को हमारी जिंदगी में उतरना चाहिए। पहली बात ये कही कि रसूल ने जो कुछ दिया है उसे ले लें, जिन चीज से रोका है उनसे रुक जाएं। फिर उसके बाद कहता है कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, जब अल्लाह और उसका रसूल ऐसी बातों की तुम्हें दावत दे दे जिसमें तुम्हारी हयात पाई जाती है तो तुम लब्बैक कहो। वह बताना चाहता है कुरान कि अल्लाह रसूल जिन बातों की दावत देते हैं उसमें तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी हयात है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी तो उन पर लब्बैक कहना उनका एहतराम है। अगर किसी चीज की तरफ बुलाया है लब्बैक कहें, उसका लब्बैक अल्लाह के रसूल आपने कहा है मेरी जिंदगी से दूर नहीं रहना चाहिए। मसलन कहा है हमारे घर में, अगर हमारे घर में औलाद पैदा हुई नाम रखते हैं, नाम उसकी पहचान का जरिया बनता है, लेकिन क्या इस सिलसिले में नहीं कहा कि नाम खाली अपने एतबार से रख लेना चाहिए है, हमको जो अल्फाज अच्छे लगते हैं वो नाम रख लेना चाहिए है? नहीं, फरमाया कि अच्छे नाम का इंतखाब करो, अच्छे नामों का इंतखाब करो। हमारे तो अच्छा वो होता जो रदीफ और काफिये में हो जाएंगे। तो मसलन इसका फुरकान नाम है तो उसका इरफान हो, एक रदीफ काफी मसलन, और उसी वजह नगाने उर्दू में और अरबी में और फारसी मिला जुला करने चले आते हैं। यकीन कीजिए कि और नए नाम रखने की, मैं इस पर बोलना शुरू कर दूं देर लग जाएगी नए से नए नाम लाने के लिए। सबसे पहले मौलवी साहब से पूछते, मौलाना साहब जरा सा रहनुमाई कीजिए, कोई नाम बताइए। भाई ये नाम रख लो, मौलाना ये तो हमारे खानदान में है, ये तो हमारे घर में है, ये हमारे फलाम। मैं सिर्फ इशारा कर रहा अजीजों, 14 मासूम है, खाली मासूम 14 है ना, 14 में 4 मोहम्मद है, 4 अली है, 2 हसन है, 14 कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, मगर नाम की तकरार देखिए कितनी है। गोया ये नाम की तकरार बता रही कि अच्छे नाम का इंतखाब करो, तकरार को ना देखो, इसलिए कुछ नाम के असरात भी होते हैं। ये मेरा एक मौजू हलक से मैं कहता हूं, यकीन कीजिए उसके नाम के असरात भी जिंदगी पर मुरतब होते हैं। और ये 4 नाम और ये जो 14 नाम, तो ये इलाही नाम है, अल्लाह की तरफ से आए हुए नामों का इंतखाब करना। मैं अगर जिंदगी के वाकयात को बयान करने लगूं तो कितना इंसान वाकई दूर होता चला जा रहा है। इशारा कर दीजिएगा अगर मैं देर पड़ रहा हूं जनाब मुगेश साहब। जी हाँ, इसलिए कि मैंने कभी कहा था और फिर एक बार तो कह रहा हूं कि अगर हमारे लखनऊ में जो है एक जमाना था कि वहां अच्छे मशायरे होते थे, अदबी तो जाया करते थे, अगर कभी पढ़ने वाला जो है कोई खाली, तो सुनने वाले मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कोई लघु लहजा सुनने के लिए आता है, कोई मानो मफहूम समझने के लिए जानने के लिए आता है, कोई बात वाकई अच्छी बात के लिए, तो बाज आते हैं कि कैसा पढ़ने वाला है, न शेर में न जान है न लघु लहजा है। एक मोटा आदमी जो है उसी मजमे से उठा, हाथ में लाठी लिए हुए बढ़ रहा है, वो पढ़ ले जो साहब तख्त लफ्ज पढ़ना नहीं आ रहा था, लघु लहजा भी नहीं था, देखा कि साहब पढ़ते हुए चले आ रहे, कहले भाई बैठ जाइए भाई, इंशाल्लाह सिर्फ 2 शेर और सुन लीजिए, बस खाली 2 शेर सुन लीजिएगा। तो उसने कहा नहीं भैया, मैं लखनऊ का हूँ, लखनऊ में जो तहजीब अदब पाया जाता है, मैं आपके पीछे नहीं आ रहा हूँ, मैं तो उन्हें तलाश करने के लिए हूँ जिन्होंने आपको बुलाया है, जिन्होंने आपको बुलाया है मैं उन्हें तलाश करने, मुकेश साहब ने हमें बुलाया है। अगर जो है देर लग जाए ना आपको और समझ में आएगी कैसे को बुला लिया, तो उनसे समझिएगा जी सर। मेरे बीच में इतनी बात खाली इसलिए कहती है, वाकन बहुत संजीदा गुफ्तगू देर तक भी होती रहती है ना, तो देर तक संजीदा गुफ्तगू की वजह से भी आदमी थक जाता है, लेकिन जरूरत है संजीदा बात करे, आदमी सोचे और समझे। अल्लाह के रसूल कहता कौन नहीं कहेगा, मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल ने ये बात कही कि जो अल्लाह से डरने वाला हो जाए फिर वो किसी चीज से नहीं डरता, लोग उससे डरते हैं। हम दुनिया की हर चीज से डरते हैं, अल्लाह ही से नहीं डरते हैं। अगर उससे डरने लगे तो हर चीज सिर्फ हमसे खौफ खाए, और यकीनी तौर पर कोई दूसरी से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। बल्कि मैं फिर एक सच्चा वाकया लतीफा नहीं कर रहा, वाकई सच्चा वाकया, बिल्कुल सच्चा वाकया है, लेकिन लतीफे का अंदाज है। देहात में एक मस्जिद में, मुझे जगह का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, जगह का नाम वगैरह पसावकत अच्छा नहीं लगता है, और जिला का भी और गांव का भी नाम मुझे मालूम, चूंकि सच्चा वाकया है। एक बुजुर्गवार जो है कहीं चले गए थे, प्रोग्राम में देर हो गई, और देर में जब आए हैं तो वो उस गांव के नहीं थे, किसी और गांव के थे, एक आदमी पहचानने वाले थे, सोचा कि इतनी देर के घर जाके दरवाजा खटखटाए अच्छी बात नहीं है, चले गए मस्जिद में सोने के लिए। मस्जिद में गए तो जाहिर देहात की मस्जिद गर्दो गुबार से भरी हुई थी, और चीटियां उठियां चल रही थी, मैं कहां इसमें सो जाऊंगा, कैसे सोऊंगा। तो उन्होंने क्या देखा कि देखिए हर जगह मस्जिद में हमारे यहाँ आमतौर से जनाजा उठाने के लिए जो है कफिन बना हुआ था, जिसमें जनाजा लेके जाते वो रखा होता, उन्हें देखा उसमें रखा हुआ है, उसमें चारों तरफ दीवार सी बनी हुई अच्छी से बनी हुई, जाके उसमें लेट गए, उसमें जाके लेट गए कि ये महफूज जगह है, उसके पाए बने हुए तो जमीन से ऊंची भी जाएगा, उसमें लेट गया, और जनाजे पर जो चादर डाली जाती वो चादर भी मौजूद थी, उन्हीं ने ऊपर से वो डाल लिया, उसको ऊपर से डाल लिया, लेट गए, सो नींद आ गई, अच्छी से सो गए। सुबह को जब मुअज्जिन है उनके दोस्त थे, सुबह को जब मुअज्जिन आए अजान देने वाले, अजान के अल्लाह अकबर, कोई बोल रहा है, धीमे से वो चादर हिली, अच्छा जो अजान दे रहे तो देर चादर हिल रही है, दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहा, उन्हें थोड़ा सा कोना हटाया कि अजान हो रही है, जब तीसरी मरतबा जो उनका अल्लाह अकबर कहा तो जल्दी से उन्हें अपना चादर ऊपर डाले तो हटा दिया, और ये भागे भागे अजान देने वाले थे अल्लाह अकबर कहते हुए दौड़ते हुए चले जाएंगे, बेचारा पुकार रहा है भला अब्बास भाई, अब्बास भाई मैं हूं। कहने का मकसद ये कि ये सोचे कि अजान कहने वाला अल्लाह अकबर किससे डर के भाग रहा है भाई, किस चीज से वो डर के भाग रहा है। میں اعلان کر رہا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور بھاگ رہا تصورات سے بیچارہ، وہ بھی آواز دے رہا فلاں بھائی، تو وہ بھی نہیں سنائی دے رہا. ایمان ایسا ہو کہ اگر اللہ کو بڑا کہہ دیا ہے تو ہر چیز چھوٹی نظر آنی چاہیے، ہر چیز میں چھوٹی نہیں چاہیے، اللہ ہے ساتھ میں، ہمارے ساتھ میں. تو اس لیے نبی کریم کا احترام، دو تین باتیں میں کہوں گا اور یہ تھوڑا سا محسوس کرنے کے لیے ہے. اللہ نے احترام یہ بتایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، احترام ہے نبی کی احترام کا. نبی 1400 سال پہلے تھے، اگر یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا، تو قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے نا بھائی، میں پڑھ رہا ہوں تو قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے، تو کہاں نبی ہیں، کہاں نبی ہیں؟ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کی آواز پر میں اپنی آواز کو بلند نہ کروں. ہے اگر نبی کریم نے کوئی بات کہی ہے، حکم دیا ہے، اور ان کی بات کے خلاف میں کوئی اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی بات پر اپنی بات کو بلند کر رہا ہوں. میں ان کے احترام کے خلاف سمجھنے کی صحیح کریں، کوشش کریں. وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی طرف سے بات لے کر کے آئے ہیں پہنچے، اور آج آپ کے زمانے اپنے زمانے میں کوئی ایک نظریہ، اس نظریے کو زور دے رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، ہر گھر میں عبادت. آخر اس زمانے میں اس کا فائدہ کیا ہے، کیا ہوگا آخر اس زمانے میں ایسا کرنے سے فائدہ کیا؟ اگر ہم نے جو ہے نماز نہیں پڑھی اور وہاں لوگ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر ڈھیروں باتیں کہہ رہے تھے، خالی کہہ نہیں رہتے ہیں، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے کہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ احترام کے خلاف ہے. کیوں کہہ رہا ہے آدمی اس بات کو؟ اس نے کہا ہے کہ ساری باتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، عزت نصیب ہوگی، یقین کیجئے اس میں عزت نصیب ہوگی. سوچے پھر غور کرے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں، کس طرح سے کر سکتا ہوں. یقینی طور پر جب اس پر عمل کرے گا تو یقین کیجئے کہ اس نے احترام نبی کیا ہے. اور ایک خاص بات یہ کہ احترام بتایا ہے کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، تم اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ جانا. ہم اور آپ ساتھ میں چل رہے ہوں، مولوی صاحب چل رہے ہیں، بھائی آگے نہ چلو، ساتھ میں پیچھے چلیں. مثال کے طور پر یہ احترام ہی تو ہوتا ہے نا بھائی، کوئی بزرگ چل رہا ان سے آگے نہ چلیں، تو یہ احترام ہوتا ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ چلو آگے، تو آگے بڑھنے کا مطلب یہاں کیا ہے، کیا ہے؟ یقینی طور پر اگر دیکھنا چاہیں گے، غور کا عملی طور سے تھوڑا سا اشارہ کروں، ورنہ یہ بھی گھنٹے بھر بات کرنے کی ہے، کہ اگر مسجد النبوی میں جائیں آپ، فقہی اعتبار سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مسالک کے اعتبار سے تھوڑا سا کہیں اختلاف ہو، لیکن عملی اعتبار سے اختلاف نہیں ہے. نبی کریم کی ذریعہ اقدس، آپ کی قبر جہاں ہے، اس قبر سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی نہیں؟ نماز ہوگی، کم از کم فقہ جعفری کے اعتبار سے 100% میں کہہ رہا ہوں، دوسرے فقہوں کے اعتبار سے بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جہاں اصل مسجد بنی ہوئی ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے، لیکن سارا اضافہ پیچھے ہوا ہے، پیچھے کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم جو ہیں آپ کا مزار ہے، اور جو اصل محراب ہے مسجد کی، اس مزار سے آگے بڑھ کر کے نہیں ہے. اس سے اگر آپ غور کریے گا، جا کے دیکھ لیجیے گا ذرا سا، یا تو برابر تک ہوگا مگر تھوڑا سا پیچھے ہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی کرے گا نماز، پڑھے گا، تو اس کی نماز نہیں. یہ احترام عملی ہے، جیسے زندگی میں آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی مرنے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ اگر منو مٹی کے درمیان بھی ہو تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم نے اپنے لیے بات کہی ہے کہ جو شخص میری زیارت کرے گا میری زندگی میں، یا میرے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد بھی اگر کسی نے میری زیارت کی ہے، تو گویا اس نے مجھے میری حیات میں دیکھا ہے. اور یہ شرط یہ کہ جو میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں بھی اس سے ملوں گا، جیسے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا میں بھی ویسے اس سے ملوں گا. اگر کسی نے میرا احترام کیا تو ہم بھی اس کو احترام دیں گے، عزت دیں گے. عزیزان گرامی، اس لیے زیارتوں کا فلسفہ بھی یہی ہے، اس میں اور یہ احترام کا ذریعہ بھی ہے۔ عزیزوں، میں گھڑی لگاتا نہیں ہوں، یہاں کہیں گھڑی لگی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنی مجھے بات کہنی چاہیے تھا ایک نشست میں اتنی بات کہی ہے، باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن آخر میں دعا کرتے ہوئے نہیں کہوں گا۔ پروردگارا، تجھے واسطہ رسالت مآب کا، اور تیری خود اپنی ذات اور تیرے کرم اور تیرے رحم کا واسطہ کہ مسلمان کے شعور کو بیدار کر دے اور اسلام کی سچائی اور حقیقت کو پہلے ان کو سمجھا دے۔ پردگارا، کو اسلام پر جیسے عمل کرنا چاہیے، مسلمان با عمل بن جائیں۔ خدا کی قسم، اگر اسلام، اور صرف اس کو اشارت نہیں کہوں گا اور دعا کی شکل میں کہوں گا کہ واقعا اسلام، مسلمان اگر با عمل بن جائیں تو ایک فرد کے خالی چیخ کر کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے فلاں جگہ کو فلاں کا دارالحکومت بنا دیا ہے۔ اور کتنی جرات سے ایک آدمی کہہ دیتا ہے، اور آدمی اتنا مسلمان خالی اپنی جگہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اے کاش کہ باعمل بن جائے۔ باعمل بننے کی شکل مجھے ہمت نہیں پڑتی ہے کہنے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں، اللہ پر اعتبار اور ایمان کی صورت میں دنیا میں ایک حکومت پائی جاتی ہے، جب سے بنی ہے تب سے مخالف ہے امریکہ کی، لیکن مخالفت کے باوجود بھی کم سے کم اس کی ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، اس کے بعد میں جو ہے ایک زور پایا جاتا۔ اے کاش کی اگر 40-45 سے زیادہ جو ہے، بلکہ 50 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، واقع باعمل ہو جائیں، خدا کی قسم باعمل ہو جائیں کہ اسلام ہمیں شعور دیتا ہے اور اسلام سر بلند ہے، تو خدا کی قسم کسی میں جو ہے ہمت بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن کہنے ہی سے شعور پیدا بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہم حاجت کے بندے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اگرچہ تو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، مگر کہتے اس لیے تاکہ محبت کا اظہار ہو، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے کہتا بھی ہے۔ اللہ، ہم تیری ذات سے محبت کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں عرض لے کر کے آئے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر، اور محمد علی محمد کا واسطہ، تیرے رسول کا، تیرے حبیب کا واسطہ، جو پریشان ان کی پریشانیوں سے نجات عنایت فرما، اور جو اس دنیا میں دے رہے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں دنیا میں زندہ ہیں پروردگار، ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم سب کو عزت کی زندگی گزارنے کا سلیقہ عنایت فرما، اور ہم کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
محمد وآل محمد، صلوات۔